पिछले अध्याय में आपने देखा कि रुद्र ने एक आदमी को पकड़ने का आदेश दिया जो उसे धोखा देने की हिम्मत करता है। इसके बाद रूही रुद्र को कॉफी देने आती है और गलती से उसके हाथ पर कॉफी गिरा देती है। डर के मारे रूही रुद्र की उंगली को चूसने लगती है, जिससे रुद्र उत्तेजित हो जाता है। रुद्र रूही को किस करने लगता है, लेकिन रूही उसका विरोध करती है। रुद्र ने आखिरकार रूही को छोड़ दिया, लेकिन रूही के आंसुओं के बाद वो खुद को वापस खींच लेता है। अब आगे चैप्टर 95। अब आगे, जिसे समझ वे अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और फिर अपनी आंखें खोल रूही के कपड़ों को ठीक कर रूही से दूर होता है और रूही को एक नज़र देख वे सीधा स्टडी रूम के बने बाथरूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के जाने के बाद रूही अपनी आंखों से आंसू साफ करती है और अपने कपड़ों को सही करते हुए कहती है, इसके पहले कि वे शैतान वापस आ जाएं और मेरे साथ फिर से अपनी घटिया हरकतें शुरू कर दे, मुझे जल्द के जल्द यहाँ से निकलना होगा। इतना बोल वे तुरंत स्टडी रूम से निकल जाती है और भागकर अपने कमरे में जाती है और सीधे बाथरूम में भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र स्टडी रूम के बाथरूम में शावर ऑन कर पानी के नीचे खड़ा था। उसकी आंखों के सामने बार बार रूही का उसकी उंगली चूसना याद आ रहा था और किस तरह उसने अभी रूही को देख अपना कंट्रोल खो दिया था। इस बात को याद कर रुद्र अपनी मुट्ठियां कसते हुए बोला, रुद्र, तू इस तरह रूह को देख अपना कंट्रोल नहीं खो सकता। तुझे उसे अभी थोड़ा टाइम देना होगा, उसे तुझे प्यार से हैंडल करना होगा। इतना बोल खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि रूही के इतने ज्यादा करीब होने की वजह से वे काफी ज्यादा टाइट हो गया था। वहीं दूसरी तरफ सुमन और धीरज के कमरे में। सुमन धीरज की चाय ले कमरे में आती हैं और धीरज को देख उनके सामने चाय करते हुए कहती हैं, ये लीजिए, चाय पी लीजिए। धीरज जो एक फाइल चेक कर रहे थे और उनका काम खत्म हो गया था, सुमन के बोलने से वे सुमन के हाथों से चाय ले टेबल पर रखते हुए सुमन की कमर को पकड़ अपने करीब करते हुए उसे अपनी गोद में बैठा अपनी बाहों में कसते हुए कहते हैं, सुमन, मुझे चाय के अलावा कुछ और भी पीने का मन कर रहा है। सुमन धीरज की बात ना समझते हुए उनसे अपने आप को छुड़ाते हुए हल्के गुस्से में बोली, देखिए, आपको जो पीना है आप बता दीजिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझे छोड़िए। अगर किसी ने इस उम्र में आपको बच्चों जैसी हरकतें करते हुए देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। सुमन की बात सुनकर धीरज सुमन के कान के पास जा उसके कान को चूमते हुए बोले, सुमन, आपको मेरी ये हरकतें बच्चे जैसी लग रही हैं, तो चलिए ना बड़ों जैसी हरकतें करते हैं। इतना बोल वे सुमन के गले पर किस करने लगते हैं, जिसे महसूस कर सुमन अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरज के प्यार को महसूस करने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसे अभी नाश्ते की भी तैयारी देखनी है, जिसे याद कर सुमन धीरज की बाहों को खुद को जल्दी से छुड़ा बोली, नहीं, छोड़िए मुझे अभी, मुझे बहुत काम है, मुझे अभी नाश्ते की भी सारी तैयारियां देखनी है, आप मुझे परेशान मत कीजिए और मुझे जाने दीजिए। सुमन की बात सुनकर और उसे यूं खुद के दूर जाता देख धीरज गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वे जब जब सुमन के करीब जाने की कोशिश करता था तब तब सुमन यही कहती कि उसे कुछ काम है, जिसे सोच धीरज गुस्से से खड़ा होता है और सुमन के पास जा उसे बिना वार्निंग से अपनी गोद में उठा लेता है और बेड के पास आ सुमन को बेड पर लेटा उसके ऊपर आते हुए कहता है, सुमन, आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, आज आप मुझे खुद को प्यार करने से नहीं रोक सकती। इतना बोल वो एक बटन प्रेस कर दरवाजे को लॉक करता है और अपनी शर्ट उतार सुमन के ऊपर झुक उसके गुलाबी होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। वहीं सुमन जब धीरज को गुस्से में किस करते हुए देखती है तो वे बिल्कुल शांत हो जाती है और धीरज को शांत करने के लिए खुद भी धीरज को किस करने लगती है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर धीरज इसी तरह गुस्से में रहे तो धीरज का सारा गुस्सा उनके ऊपर ही उतरेगा और उन्हें ही दर्द सहना पड़ेगा। इसलिए वे धीरज का साथ दे उन्हें शांत करने लगती है, ताकि वे ये सब प्यार से करें ना कि गुस्से से। वहीं दूसरी तरफ धीरज सुमन का साथ पाकर सच में शांत हो जाते हैं और सुमन को प्यार से प्यार करने लगते हैं। वे जब देखते हैं कि किस करने की वजह से सुमन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वे सुमन के होठों को छोड़ उसके गले और क्लीवेज पर किस और बाइट करने लगते हैं। धीरज के बाइट करने से सुमन को थोड़ा थोड़ा दर्द को हो रहा था, मगर वे कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें धीरज के इसी तरह प्यार करने की आदत थी। वहीं धीरज सुमन के क्लीवेज को किस करते करते सुमन के सीने तक बढ़ने लगते हैं, मगर सुमन के कपड़ों की वजह से उन्हें सुमन को प्यार करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वे सुमन से थोड़ा दूर हो सुमन की साड़ी और ब्लाउज को निकाल देते हैं और फिर सुमन को प्यार करने लगते हैं। धीरज को जब लगता है कि अब वे खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वे अपने और सुमन दोनों के कपड़े एक एक कर निकाल देते हैं और सुमन के अंदर बिना किसी वार्निंग से एंटर हो जाते हैं, जिसके सुमन की हल्की चीख निकल जाती है, जिसे देख धीरज सुमन के होठों पर अपने होठ रख उसे दोबारा से किस करने लगते हैं, जिसके सुमन भी अपने दर्द को भूल धीरज में खोने लगती है। आधे घंटे इसी तरह और प्यार करने के बाद सुमन धीरज को रोकते हुए कहती है, धीरज, अब और नहीं, वरना सब क्या कहेंगे, अब छोड़ दीजिए ना, मुझे अभी नीचे भी जाना है। सुमन की बात सुनकर धीरज रुक जाता है और सुमन को वार्निंग देते हुए कहते हैं, सुमन, आगे से मुझसे दूर जाने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इतना बोल सुमन के माथे पर किसकर सुमन को छोड़ देता है। वहीं धीरज के छोड़ने से सुमन चैन की सांस लेती है और खुद को अच्छे से कवर कर अपने कपड़े ले बाथरूम में जाने लगती है, जिसे देख धीरज सुमन का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, सुमन आप बाथरूम में क्यों जा रही हैं? मेरे सामने ही बदल लीजिए, वैसे भी आप मुझसे क्या छिपा रही हैं? मैंने तो आपके शरीर के हर एक हिस्से को देखा और महसूस किया है, तो मुझसे छिपाने से क्या ही फायदा। धीरज की बात सुनकर सुमन अपना हाथ छुड़ा बाथरूम में जाते हुए बोली, आप बहुत ज्यादा बेशर्म है। इतना बोल दरवाजा जल्दी से बंद कर लेती है। वहीं धीरज सुमन की बात सुनकर बोले, सुमन अगर मैं बेशर्म ही होता तो हमारे इतने बड़े बच्चे नहीं होते। इतना बोल मुस्कुराने लगता है। वहीं सुमन धीरज की बात का कोई भी जवाब नहीं देती, जिसे देख धीरज भी अपने कपड़े पहनता है और फ्रेश होने के लिए दूसरे बाथरूम में चला जाता है।
कुछ देर में सुमन फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखती है कि कमरे में कोई नहीं है, जिसे देख चैन की सांस लेती है और जाकर शीशे के सामने तैयार होने लगती है। तभी वे शीशे में कुछ ऐसा देखती है जिसके उसके चेहरे पर फिर से गुस्सा नजर आने लगता है।